أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة ملك سے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو موضوع سورت کا ہے دنیا کی زندگی امتحان ہے جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ آپ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک تلاوت نہ فرما لیتے تو آپ کا ایک خاص تعلق تھا روزانہ رات کو آپ اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی پانچ آیات میں عظمت و اوصاف باری تعالیٰ. تبارک الذی بیدہ الملک, بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے کل حکومت. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو گویا تین صفات آ گئیں کہ بہت بابرکت ہے اللہ کی ذات اور وہی حقیقی بادشاہ ہے اس کائنات کا, اور نمبر تین کہ کل قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے, اور نمبر چار الذی خلق الموت والحیات, اور وہی اللہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. وہو العزیز الغفور, اور وہ اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا, تو جیسے بات ہوئی کہ پوری سورت کا موضوع یہی ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے, اور اللہ نے یہ جو موت اور حیات کا سلسلہ رکھا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے, بلکہ اصل وجہ جو ہے وہ انسان کی آزمائش ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اور جیسے کہ آج کل ماحول بھی ہے, آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے, کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. تو یہ امتحان وہی ہے, کردار بدلتے جا رہے ہیں, کل کچھ اور لوگ تھے آج میں اور آپ ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. اللہ کرے کہ ہم اسی کردار پر ہوں جو کردار جو ہے اللہ کو ماننے والوں کا ہے, مومنین کا ہے. آگے آیات آفاقی کے ساتھ جو ہے وہ دلیل دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی. فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا, وہی اللہ جس نے پیدا کر دیے آسمان اوپر نیچے, اور جیسے ہم کہہ چکے کہ سات آسمان ہیں اوپر نیچے تہ بتہ, ایک کے اوپر پھر دوسرا پھر تیسرا, اور حقیقت یہ کہ ابھی تک سائنس پہلے ہی آسمان کو نہیں پہچان سکی, تو ہمارے لیے ابھی یہ آیت جو ہے متشابہات میں سے, ہمیں اس کی صحیح حقیقت کا اندازہ نہیں کہ سات آسمانوں سے کیا مراد ہے. فرمایا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, اور نہیں دیکھتے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی فرق. فرجع البصر, بس دوبارہ ذرا ڈالو نگاہ. حل ترا من فطور, کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف. تو یہ آسمان تو اس کی چھت جو ہے وہ ہمیں بالکل ہموار نظر آتی ہے, کہیں کوئی رخنا کہیں کوئی شگاف نظر نہیں آتا. فرمایا سمر جل بسرا کر رہا تھا, پھر نگاہ لوٹاؤ ذرا دوبارہ. ینقلب الیک البصر, اور لوٹ آئے گی تمہاری طرف تمہاری نگاہ. خاص وہ حسیر, ناکام اور تھکی ہوئی ہوگی, یعنی اس آسمانوں میں اگر کوئی کمی کمزوری کوتاہی شگاف ڈھونڈنے نکلو گے تو پھر یہ انجام ہونا ہے. آگے پھر جو ہے وہ آپ کے آیات آفاقی میں سے ایک اور دلیل دی جا رہی ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اور ہم نے سجا دیا ہے آسمان دنیا کو چراغوں سے. تو یہ قرآن بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ جو پہلا آسمان ہے جسے ہم آسمان دنیا کہتے ہیں, اسے اللہ نے زینت دی ہے چاند سورج ستاروں سے. تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ چاند سورج ستارے یہ پہلے آسمان پر ہیں, پھر دوسرا آسمان اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے علم ہی نہیں ہے اس کا معاملہ. تو فرمایا وجعلناها رجوما للشیاطین, اور ہم نے بنا دیا ان کو شیطان کو مار بگانے کی جگہ. تو بات ہوئی تھی کہ یہ فرشتوں کی چوکیاں ہیں. اکثر یہ جو ہم ستارے کہتے ہیں یہ بھی اصل میں بڑے بڑے سورج ہیں, اور جو ہے ایسٹرانومی میں جو ہے وہ یہ سورج ہی ہیں جو دور ہونے کی وجہ سے ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہم انہیں ستارہ کہتے ہیں. تو یا تو ستارے یا یعنی کائنات میں یا تو سورج ہیں یا سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے بڑے بڑے وہ پلانٹس ہیں. پلانٹس میں جلنے کا یا آگ کا معاملہ نہیں ہے, तो उसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है और वो हमें चमकते हुए नज़र आते हैं, वरना ज़्यादातर ये सूरज ही हैं जिन्हें हम सितारे कहते हैं। और गोया ये चौकियाँ हैं फरिश्तों की, और यहाँ से मलाए आला की हिफाजत की जाती है। और जब भी कोई सरकश जिन कोई टो लेने जाता है तो उस पर आग के गोले बरसाए जाते हैं जिन्हें शहाब साकिब कहते हैं। वह आतदना लहुम आज़ाब सईरा, और मैं के और हमने तैयार कर रखा है उन सरकश जिनों के लिए भड़कती आग को। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, अब कुफर के होलनाक नतीजे बयान हो रहे हैं, और उनके लिए जिन्होंने इनकार किया अपने रब से, अज़ाब जहन्नम, उनके लिए है जहन्नम का अज़ाब, बिसल मसीर, और वो बहुत ही बुरी जगह है लौटने के अतबार से। जहन्नम के जो है तकरीबन चार औसाफ़ बयान हो रहे हैं। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा, जब वो डाले जाएंगे यानी नाफरमान गुनाहगार और ये कुफार जो है जहन्नम में, समिउ लहा शहीक़ा, तो वो सुनेंगे उसे ज़ोर से चिंघाड़ते हुए। वही तफूर, और दूसरी सिफत आ रही है, वो जोश मार रही होगी, जैसे आप देखें कि किसी को बड़ा ज़ोर से काबू किया हुआ वो अपने आप को छुड़ा के झपटने के लिए बस बढ़ रहा हो, तो ये कुछ कैफियत जो है जहन्नम की होगी जहन्नमियों के लिए। एक तो देख कर चिंघाड़ेगी और फिर गोया उन पर झपटने के लिए जो है जोश मार रही होगी। और नंबर तीन, तकादु तमय्यज़ु मिन अल-ग़ैस, ऐसा मालूम होगा कि अभी फट पड़ेगी जोश की वजह से। और नंबर चार, कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौज, और जब भी उसमें झोंका जाएगा कोई गुरोह, सअलहुम ख़ज़ानतुहा, तो पूछेंगे उससे जहन्नम के दारोगा। इसमें हमने पहले नाम पढ़ा था कि हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम ये फरिश्ते हैं दारोगा जो जहन्नम के। अलम यातिकुम नज़ीर, और वो दारोगा पूछेंगे क्या तुम्हारे पास नहीं आया कोई ख़बरदार करने वाला। इस पर इकरार जुर्म करेंगे जहन्नमी। कालू बला, वो कहेंगे क्यों नहीं, कद जाअना नज़ीर, यकीनन आए थे हमारे पास भी ख़बरदार करने वाले। लेकिन अब रसूलों को क्या जवाब उन्होंने दिया उसका जिक्र आ रहा है। फरमाया फकज़्ज़बना, और हमने उन्हें झुटलाया। नंबर एक, वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, और हमने कहा कि नहीं नाजिल किया अल्लाह ने कोई भी चीज़। और नंबर तीन, इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, और नहीं हो तुम मगर जो है वो सही गुमराही में। ये कौम का जवाब था अपने रसूलों के लिए, जो ख़बरदार करने आए थे उनको गोया इनकार किया गया, और जो अल्लाह की किताबें पेश की जा रही थी उन्हें रद्द किया गया और कहा कि भाई तुम तो गुमराही में हो माज़ल्लाह। अब नदामत का जिक्र है मुजरिमीन की। वकालू लव कुन्ना नस्माऊ आऊ नाकिल, और वो कहेंगे कि अगर हमने सुना होता और हमने अकल का इस्तेमाल किया होता, मा कुन्ना फी असहाबि सईर, तो हम ना होते जहन्नम वालों में से। फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम, पस वो इकरार कर लेंगे अपने गुनाह का। फ़सुहक़ल लिअस्हाबि सईर, बस दूरी हो अहले जहन्नम के लिए, यानी अल्लाह की रहमत से वो फिर दूर हो जाएंगे। आगे फिर मोमिनीन का भी अंजाम है। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल्ग़ैब, यकीनन वो लोग जो डरते हैं अपने रब से बिन देखे, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, उनके लिए मग़फ़िरत है, बहुत अजीम अजर है, बहुत बड़ा अजर है, अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आगे वसत इल्म बारी ताला का जिक्र। वासिरू कौमकुम, और तुम छुपाओ अपनी बात, अविज हरूबी, या जाहिर कर दो उसको, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक वो अल्लाह तो सीनों के भेदों से भी वाकिफ है। जो किसी दूसरे आदमी से आदमी ने नहीं कहा होता वो भी अल्लाह के इल्म है। अला यअलमु मन खलक, क्या भला वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, उसे तो एक एक बात का पता है, उसे खूब अंदाज है तुम क्या कर रहे हो। वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर, और वो अल्लाह बहुत बारीक बीन है और वो हर चीज़ से बाखबर है, बारीक से बारीक चीज़ भी उसे पता है। इसी तरह आगे फिर आयात आफाकी आ रहे हैं तौहीद की दलील के तौर पर। हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ध ज़लूला, और वही अल्लाह है जिसने बना दिया तुम्हारे लिए ज़मीन को नरम। फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा, ताकि तुम चलो उसके अतराफ़ में। वकुलू मिन रिज़्क़िही, और खाओ उस अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से। वइलैहि नुशूर, और उसी अल्लाह की तरफ दोबारा इकट्ठा किया जाना है। बयान हो रहा है कि अज़ाब कौन देता है। अअमिनतुम मन फ़िस्समा, क्या तुम अमन में हो, क्या तुम निडर हो गए उससे जो आसमान में। अयख़सिफ़ा बिकुमुल अर्ध, कि वो धंसा दे तुम्हें ज़मीन में। फ فَإِذَا هِيَ تَمُوتُ بس وہ یک یک لرزنے لگے. تو اللہ سے, اللہ کے عذاب سے, اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کے لیے یہ عین ممکن ہے کہ وہ گناہ گاروں کو زمین میں دھسا دے. اسی طرح اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو. دوسری مثال دی جا رہی ہے, ام امنتم من فی السماء, کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے, ایوسل علیکم حاسبا, کہ وہ بھیج دے تم پر پتھروں کی بارش, فستعلمون کیف نذیر, پھر تم جان لو گے کہ کیسا تھا ہمارا ڈرانا. ولقد کذب الذین من قبلہم, اور جھٹلا چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے, فکیف کان نکیر, بس کیسے تھی ہماری ناراضگی. جو بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے تو وہ پھر امن میں نہیں رہتا, امن چھین دیا جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں رسوائی, ذلت اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اسی طرح دلیل عقلی دی جا رہی ہے پرندوں سے. تو پہلے جو ہے وہ زمین سے دلیل دی گئی تھی توحید کی, اور اب پرندوں سے. اولم یروا الی الطیر, کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف, فوقہم, اپنے اوپر, صافات و یقبضن, جو پر کھولتے ہیں اور پھر سکوڑتے ہیں, ما یمسکہن الا الرحمن, کون تھامے ہوئے انہیں سوائے رحمان کے, انہ بکل شیء بصیر, اور بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو یہ پرندے بھی کیسے معلق ہوتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان اور اڑ رہے ہیں, اور یہ کس کی مرضی سے ہے اور کون, کس نے انہیں یہ صلاحیت دی ہے, تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح آ رہا ہے مدد کون کرتا ہے, امن حاضر لذی ہوا جند لکم, بھلا کون ایسا ہے جو تمہارا لشکر ہو, ینصرکم من دون الرحمن, جو تمہاری مدد کر سکے سوائے رحمان کے, یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی لا سکتے ہو لشکر. فرمایا ان الکافرون الا فی غرور, اور کافر نہیں ہے مگر دھوکے میں پڑے ہوئے, کوئی اللہ کا مقابل نہیں ہو سکتا, اللہ کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. آگے بیان ہو رہا ہے رزق کون دیتا ہے, امن حاضر لذی یرزقکم, کہ بھلا کون ہے ایسا جو تمہیں رزق دے, ان امسک رزقہ, اگر وہ اللہ تم سے اپنے رزق کو روک لے, بل لجو فی عطوی و نفور, بلکہ وہ اڑے بیٹھے اپنی سرکشی میں اور نفرت میں. اسی طرح ہدایت پر کون ہے, فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا, بس کیا وہ شخص جو چلتا ہے وہ اندھے منہ, یعنی منہ کے بل, وہ زیادہ گویا ہدایت پر ہے, امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, یا وہ شخص جو اپنے دونوں پیروں پر بالکل سیدھا چلتا ہے سیدھے راستے پر. تو منہ کے بل چلنے سے مراد کیا ہے, کہ زندگی جو ہے بطن کے تقاضوں میں گزارنا, کھانا پینا جنسی تقاضے, بس یہی مقصد ہے زندگی, گویا اوندھے منہ کھسک رہا ہے وہ زمین پر, اور ایک آدمی جو ہے وہ پورے دونوں پیروں پر کھڑا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے ہدایت کا راستہ کیا ہے, کون سا راستہ اللہ کی رضا کا ہے, کہاں اللہ کی ناراضگی ہے. تو کون زیادہ ہدایت پر ہو, جس کی زندگی صرف یہ بطن کے تقاضے پورے کرنے کے لیے, یا وہ جو واقعی انسان کی طرح کھڑا ہو کر اور باوقار طریقے سے زندگی گزارا. اسی طرح دلیل عقلی انفسی آ رہی ہے تیسری دلیل, قل هو الذی انشأکم, اے نبی کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور پھر اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل, قلیلا ما تشکرون لیکن بہت تھوڑا ہی ہے جو تم شکر کرتے ہو. تو اکثر نعمتیں اللہ کی ہیں کہ ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے, لیکن معاملہ وہی ہے کہ اس پر شکر بہت کم ہے. صوفیہ کہتے ہیں ہر سانس پر اللہ کے دو شکر واجب ہو جاتے ہیں, ایک سانس کے اندر لے جانے کا شکر اور ایک سانس کے باہر نکالنے کا شکر. تو آدمی ذرا دیکھے کہ وہ کتنا شکر کر رہا ہے. آگے بیان قیامت ہے, اصل ٹھکانے کا ذکر کیا جا رہا ہے, الذی زرعکم فی الارض, وہ اللہ جس نے پھیلا دیا تم کو زمین میں, وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اسی کی طرف جو ہے وہ جمع کیا جانا ہے, سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا. اب ان کا ایک اعتراض, اس کا جواب, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, اب وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ, کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو کہا جا رہا ہے اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو, قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ, اے نبی آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے, وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, اور بے شک میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں. कैफियत क्या होगी बवक्त अजाब, अभी तो सवाल कर रहे हैं लेकिन उन्हें तस्वीर दिखाई जा रही है, क़यामत का दिन वो होगा जब तुम्हारी ये हालत होगी। फलम्मा राहुल जुल्फा, और जब वो देखेंगे उसे यानी क़यामत को बिल्कुल करीब, सी अत वजूहुल लज़ीना कफरू, तो बिगड़ जाएंगी सूरतें उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया। वकीला हाज़ल लज़ी कुंतुम बिही तद्दाउन, उनसे कहा जाएगा यही है जिसका तुम दुनिया में जो है जल्दी मांगा करते थे। आगे सूरत के अख्तिताम पर तीन कुल जो है वो आ रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोया ऐलान कराया जा रहा है। गोया पहली बात ये कही जा रही है कि कुफार को जवाब दीजिए कि तुम अपनी फिक्र करो, मेरे साथ क्या होता है, मुसलमानों की क्या साथ होता है वो अलहदा बात है, अपनी तो फिक्र करो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। कुल ए नबी आप कह दीजिए, अरे आई तुम, भला जरा देखो तो, इन अहलकनी अल्लाह व मन माया, अगर अल्लाह हलाक कर दे मुझे उन लोगों को जो मेरे साथ हैं, और रहमना या अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, तो कौन है जो पनाह देगा काफरों को दर्दनाक अजाब से। भाई अपनी फिक्र करो, तुमने रसूल को भी रद्द कर दिया और जो है मुसलमानों को भी रद्द कर दिया, कुरान को भी नहीं मानते, तो फिर अगर जब क़यामत आएगी तो तुम किसकी पनाह में होगे। इसी तरह दावत ईमान दी जा रही है, कुल हुवर रहमान व आमन्ना भी, ए नबी कह दीजिए कि वही रहमान है जिस पर हम ईमान लाएँ, वालही तवक्कलना, और उसी पर हमने तवक्कुल किया है, फसतअलमून, पसंद करीब तुम जान लोगे, मन हुआ फी ज़लालिम मुबीन, कि कौन है सरी गुमराही में। और आखिरी कुल, और इसमें गोया दलील अकली दी जा रही है कि अल्लाह ताला की कुदरत पर तुम्हारी ज़िंदगी कायम है, अल्लाह ताला ये पानी की नेमत छीन ले तो फिर कहाँ ज़िंदा रह सकोगे। फरमाया कुल अराई तो, ए नबी कह दीजिए ज़रा देखो तो, इन असबहा माउकुम गौरा, अगर हो जाए तो वहाँ पानी खुश, ज़मीन चूस ले पानी, ये मीठा पानी रहे ही नहीं, फमन यातीकुम बिमाइन माईन, तो कौन है ऐसा जो तुम्हें ला दे ये पानी। तो ज़ाहिर है अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है और पानी पर हम सब की ज़िंदगियों का इनासार है, तो गोया ये हमें मुख्तलिफ दलाइल दिए गए हैं कि इतने रहम करने वाले, इतने नेमतें देने वाले अल्लाह की नाफरमानी से बचो, उसे राज़ी करने की फ़िक्र करो। अगली सूरत सूरह कलम है, मौजू ईमान पे रसालत है, और ये दूसरी वही थी तरतीब नज़ूली के अरबाज से। सबसे पहली वही तो गार हिरा में सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयात थी, उसके बाद दूसरी वही ये सूरह कलम की इब्तदाई 10 आयात कहलाती हैं, और इसमें इल्म की फजीलत का बयान हो रहा है। जामे तिर्मिज़ी की एक रिवायत भी है क्योंकि बिल्कुल शुरू में नून और कलम से जो है सूरत का आगाज़ किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम पैदा किया और फिर उससे कहा लिखो, चुनांचे कलम ने वो सब कुछ लिख दिया जो अब तक होने वाला था, जो अबद तक होने वाला था, तो यानी सब कुछ पहले से अल्लाह के इल्म में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तदाई 10 आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और इस्तकामत की तलकीन की जा रही है। फरमाया नून, यह हरूफ मुकत्तआत में से हैं, असल माने अल्लाह को मालूम है। एक राय यह है कि ये दवात को कहते हैं जिसमें कलम को डुबो कर फिर लिखा जाता है स्याही। वल कलम ही वमा यस्तुरून, और कसम है कलम की और उसकी जो कुछ वो लिखते हैं। मा अंत बिनअमति रब्बिका बिमजनून, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के फजल से कोई मजनून नहीं है, दीवाने नहीं हैं। वइन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और यकीनन आपके लिए तो ऐसा अजर है जो कभी रुकने वाला नहीं। वइन्नका लअला खुलुक नाज़ीम, और बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के नहायत आला दर्जे पर फाइल हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुस्न अखलाक की तकमील फरमाई गई, और जब अल्लाह ताला ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं तो इसके बाद तो कोई बात रहती नहीं। यानी अल्लाह ताला जो खालिक है वो कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर। अब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, उन्होंने पूछा क्या कुरान नहीं पढ़ा, खुलुकुल कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान थे, गोया आप चलता फिरता कुरान थे। और वैसे तो अरबी का मुहावरा है कि अल्फज़लु शहीदा बिही आदा, फजीलत यह है कि जब जो दुश्मन है वो तारीफ करें, तो अल्लाह ताला ने तारीफ़ फरमाई, सहाबा ने तारीफ़ की और सभी करते हैं, लेकिन बात यह है कि दुश्मनों ने भी तारीफ़ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी है। तैमन रॉय बंगाली जो है वो हिंदू मेंबर था इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उसने कहा कि तारीख इंसानी का अजीम तरीन इनकलाब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरपा फरमाया। एच जी वेल्स कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदीद दुश्मन, लेकिन ये कहने पर मजबूर हुआ कि इंसानी हमदर्दी मुसावात और भाईचारे पर वास तो पहले भी बहुत किए गए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नस्लों पर माशरा कायम कर दिखाया। मॉन्टगोमरी वोल्ट आप से इस्लाम का मुखालिफ, दो किताबें मोहम्मद एट मक्का मोहम्मद एट मदीना लिखी और दोनों में आप से इस्लाम की तारीफें करने पर मजबूर पाया अपने आप को उसने। इसी तरह रामकृष्णा जो हिंदू ही था और हिंदू ही रहा, लेकिन उसने कहा कि मोहम्मद एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद एक सिपहसालार, मोहम्मद एक ताजर, मोहम्मद एक हुक्मरान, मोहम्मद एक खतीब, मोहम्मद एक मुस्लिह, मोहम्मद एक यतीमों के सरपरस्त, गुलामों के महाफिज, औरतों के हकूक के अलमबरदार और मोहम्मद एक काजी। ज़िंदगी के इन तमाम गोशों में उनका यकसा पुरअज़मत किरदार रहा है। तो ये तो आप से इस्लाम के शदीद तरीन दुश्मन भी आपकी तारीफ जो है वो कर कर गए। फरमाया फसा तो बसरूना वही बसरून, पसंद करीब आप भी देख लेंगे और वो भी देख लेंगे। बे अये को मुल मफतून, कि उनमें से कौन था जिस पर जनून सवार था। इन न रब्बा का हुआ आलम, और बेशक आपका रबी खूब जानता है। बेमंजल्ला सभी रही, उसे भी जो भटक गया सीधे रास्ते से। वह हुआ आलम बिल मोहतदीन, और अल्लाह खूब जानने वाला है सीधे रास्ते पर चलने वालों को भी। फला तो तैल मुकद्दबीन, बस आप कहा ना मानिए झुटलाने वालों का। वद्दू लौ तुदहनू फयुदहनून, वो तो चाहते हैं कि आप नरमी करें तो वो भी नरम पड़ जाएं, आप उनके बुतों की मुखालफत में ज़रा नरमी करें तो वो भी आपकी मुखालफत में नरमी कर देंगे। तो फरमाया वला तो ते, और बस आप कहा ना मानिए। कुल्ला हल्ला फिर महीन, हर कसम खाने और बेकदर इंसान का। यहाँ मुफसरीन कहते हैं वलीद बिन मुगीरा की तस्वीर खींची गई है, लेकिन ये ईमान से महरूम और हक का इनकार करने वाला किरदार है जो यहाँ बयान हो रहा है। तो उसकी तकरीबन 10 जो है बुराइयाँ यहाँ बयान हो रही हैं। नंबर 1 के कसम खाने वाला, और नंबर 2 महीन, यानी इसका आम तर्जुमा होता है जलील, यानी बेकदर, जिसकी कोई कदर ही ना हो। हम्माज़ मशाइम बिन अमीन, यानी जो ताने देने वाला और चुगली खाने वाला, ये सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जब आखिरत का इनकार किया जाता है। मन्ना इल्लिल खैर, नेकी से रोकने वाला। मुअतदि नासी, हद से बढ़ने वाला गुनाहगार। उतल्लिम बादा ज़ालिका जनीन, और फिर बड़ा उजक और इन बातों के बाद बद असल भी, जिसकी कोई जो है असल जो है आप कहें नस्बत भी नहीं थी। इसे अक्सर मुफसरीन वलदुज़्ज़िना जो है वो उसे तशबीह देते हैं। अनकाना जा मालियों व बनी, और इसलिए सारी अकड़ उसमें ये थी कि उसे दिया गया था, बनाया गया था माल वाला और बेटों वाला। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब पढ़ी जाती हैं उस पर हमारी आयतें। क़ाला असातीरुल अव्वलीन, तो क्या था पिछलों की कहानियाँ किस्से हैं। सनसिमुहू अलल खुरतुम, तो हम दाग लगाएंगे उसकी सूंड पर। खुरतुम जो है सूंड को कहते हैं, नाक के लिए इस्तेमाल होता है, और ग़ज़वे बदर में जो है इसकी नाक पर फिर तलवार का ज़ख़म आया था। फरमाया इन्ना बलौना हूँ, और बेशक हमने उन्हें आजमाया है। कमा बलौना असहाबल जन्ना, जैसा कि हमने आजमाया था एक बाग वालों को। आगे बाग वालों का किस्सा है, और इस हवाले से मुख्तसर वाक़िया ये है कि एक शख्स बड़ा नेक था और बहुत सखी था, गरीबों मोहताज मिस्कीनों की मदद करता था। बाग था उसका बड़ा शानदार, और जब भी फल उतरते थे वो महरूम की मदद करता। उसका इंतकाल हो गया, बाद में बेटों ने जो है बुखल का इरादा किया। चुनांचे ये पूरा वाक़ आ रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बाग जो है ये हबशा का बाग है, हबशा में कहीं था। फरमाया कि इस अक़समू, जबकि उन्होंने कसम खा ली। ला यसरिमुन्नहा मुस्बहीन, कि हम ज़रूर तोड़ लेंगे उस बाग का फल सुबह होते ही। अब ये बच्चे हैं, और वो जो है बाप का इंतकाल हो गया, और बाद में ये आपस में प्लान करें कि सुबह ही सुबह जाके फल तोड़ लेंगे। वला यस्तस्नून, और उन्होंने इसका कोई इस्तस्ना भी नहीं कहा, यानी इंशाअल्लाह भी नहीं कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कल ये काम कर लेंगे। फताफा अलैहा ताइफुम मिन रब्बिक, बस फिर गया उनके बाद पाई फिरने वाला आपके रब की तरफ से, यानी आफत आ गई। वहुम नाइमून, और वो सो ही रहे थे। फअसबहत कस्सरी, बस वो बाग हो गया जैसे कटी हुई खेती। अब बाग वालों की कैफियत बयान हो रही है। फता नादौ मुसबहीन, बस वो लगे पुकारने सुबह होते ही, चलो भाई उठो जल्दी करो, जल्दी जल्दी पहुँचे बाग में, अब बाग का फल तोड़ लें इससे पहले के मोहताज जो है वो और मिस्कीन जो है आ जाए मांगने। अलगदु वाला हसिको, और कहने लगे कि चलो सुबह ही सुबह चलो अपने बाग की तरफ। इनकुन तुम सारिमीन, अगर तुम फल तोड़ना ही चाहते हो। फंतला को वहम या तखाफत हो, बस वो चले और फिर चुपके से आपस में कहते जा रहे थे, अल्लाह यदखुलन न हल याऊ, कि आज हरगिज़ दाखिल नहीं होना चाहिए। अलैकुम मिस्कीन, तुम पर कोई भी मिस्किन। व गदौ अला हर्दिल क़ादिरीन, और वो चाहते थे कि सुबह ही जा पहुँचे ताकि बड़े कुदरत रखते हुए वो सारा फल जो है जल्दी से तोड़ लें। फलम्मा राउहा, बस जब उन्होंने देखा अपना उजड़ा हुआ बाग, कालू इन्ना लज़ालून, तो पहला इम्प्रेशन तो ये हुआ, वो कहने लगे हम भटक गए, हमारा बाग तो बड़ा ज़बरदस्त था, ये तो उजड़ा हुआ सब जो है तबाह बर्बाद हुआ, ये कहाँ हमारा हो सकता है। फिर एहसास जुर्म हुआ और कहने लगे बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो बदनसीब हैं। काला औसत हो, फिर उनका जो औसत भाई था, एक मुराद ये ली जाती है कि भाइयों में जो ज़रा समझदार था, अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, क्या मैं उसने कहा क्या मैंने ना कहा था कि तुमसे कि यूं तुम तस्बीह कि क्यों अल्लाह की तस्बीह नहीं करते। कालू सुबहाना रब्बिना, इस पर उन भाइयों ने इकरार जुर्म किया, कहने लगे पाक है हमारा रब, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही ज़ालिम थे। फ़अक़बला बाज़ुहुम अला बास, बस वो मुतवज्जो एक दूसरे की तरफ, यतलाबमून, और आपस में मलामत करने लगे। कालू या वैलना, और कहने लगे हाय अफसोस, इन्ना कुन्ना तुआगीन, और यकीनन हम ही हद से बढ़े हुए थे। असा रब्बुना, साथ ही अल्लाह की तरफ उन्होंने रुजू किया अपनी इस गलत सोच गलत इदारे इरादे पर, अल्लाह ताला से तौबा की और कहने लगे, उनकी उम्मीद थी कि असा रब्बुना, कि कुछ बईद नहीं कि हमारा रब, अयुब्दिलना खैरम मिन्हा, कि बदल के दे दे हमें इससे बेहतर बाग। इन्ना इला रब्बिना राग़िबून, बेशक हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। कज़ालिकल अज़ाब, अल्लाह ताला फरमा रहे यूं ही हुआ करता है अज़ाब। हमारे यहाँ बड़े बड़े सैलाब आ जाते हैं, जलजले आ जाते हैं, हम कहते हैं अज़ाब थोड़ी है, नेचुरल चीज़ है। अल्लाह ताला कह रहे हैं यूं ही होता है अज़ाब, जब तुम नाफरमानी करते हो फिर तकलीफ़ आती है, बर्बादी आती है, तुम्हारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, तुम्हारे कारखाने उजड़ जाते हैं, तुम्हारे खेत बर्बाद हो जाते हैं, तो यही होता है अज़ाब। और फरमाया वला अज़ाबुल आखिरत अकबर, और जो आखरत का अज़ाब है वो कहीं बढ़कर है। लौ कानू यालमून, काश के वो जानते। तो अल्लाह ताला हमें भी तौबा की तौफीक अता फरमाए। मुफसरीन की राय ये है कि उनकी तौबा अल्लाह ने मंजूर की और उससे भी बेहतर बाग अता फरमा दी। देखिए इंसान गलतियों का पुतला है, हो जाती है नाशुक्री, लेकिन उस पर भी अल्लाह से तौबा की जाए। हादसा हो जाता है, दी हुई नेमत छिन जाती है, अभी भी मौका है, अल्लाह से तौबा की जाए, अपना जो जुर्म उसका इकरार किया जाए, अल्लाह की जनाब में रुजू किया जाए। तो अल्लाह ताला बहुत वसत वाला है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, बहुत नवाजने वाला। आगे अंजाम आखिरत बयान हो रहा है। पहले बशारत दी जा रही नेकोकारों को, इन्ना लिल्मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिल नईम, यकीनन परहेजगारों के लिए उनके रब के पास बागात है नेमतों भरे। अफनजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन, बस क्या हम कर देंगे फरमाबरदारों को मुजरिमों की तरह। मालकुम कैफा तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया है, कैसे फैसले करते हो। अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें इस तरह की बातें पढ़ते हो। इन्ना लकुम फीही लमा तखय्यरून, और कि बेशक तुमको मिलेगा आखिरत में जो तुम पसंद करो। ये कहाँ लिखा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अम लकुम ईमान, और या तुम्हारे पास कोई हल्फिया अहद है। अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़यामा, हमारे ज़िम्मे जो जो है तुम ले आओगे क़यामत के दिन। इन्ना लकुम लमा तहकुमून, और बेशक तुमको मिलेगा जो तुम हुक्म करोगे। कहाँ से तुमने सोचा हुआ, तुम्हारी मर्जी चलेगी आखिरत। जैसी ख्वाहिश करोगे वैसा अंजाम होगा तुम्हारा, और जो तुम हुक्म दोगे वो चलेगा। तो जाहिर है ऐसा होने वाला नहीं है, अल्लाह की मर्जी चलती है कायनात में, अल्लाह का हुक्म चलता है इस कायनात में। हाँ, ईमान लाओ, नेक अमाल करो, तो फिर अल्लाह ताला वो जगह दे देगा जन्नत जहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी, जैसा चाहोगे वो वहाँ होगा। वरना ईमान के बगैर और नेक अमाल से खाली लोगों को इस तरह नहीं सोचना चाहिए। फरमाया सल हम ए नबी, बल्कि कहा कि ए नबी पूछिए इनसे, अयुहुम बेज़ालिका ज़ाइम, कि कौन सा उनमें से बात का जो है ज़्यादा जिम्मेदार है। अम लहुम शुराका, क्या उनके नज़दीक अल्लाह के शरीक हैं। फलयातु बिशुराकाएहिम, तो ले आए वो अपने उन शरीकों को। इन कानु सादिकीन, अगर वो सच्चे हैं। यौमा युक्शफु अन साख, और ये अहवाल क़यामत का बयान है, जिस दिन पिंडली खोली जाएगी। अब अल्लाह ताला की ख़ास सिफत है, अब इसकी हकीकत क्या है वल्लाहु आलम। अलबत्ता बुखारी शरीफ में आता है कि जो है ये अल्लाह ताला की ख़ास तजल्ली होगी, और जिस दिन सिफत पिंडली की तजल्ली होगी, गोया उस वक्त हुक्म होगा सब लोगों को सजदा करने का। जो लोग दुनिया में अल्लाह के आगे झुकते थे वो उस दिन झुक जाएंगे, और जो लोग दुनिया में अल्लाह के आगे सजदा नहीं करते थे तो वो उस दिन अल्लाह के आगे सजदा नहीं कर सकेंगे, उनकी कमरें तख्ते की तरह हो जाएंगी। एक राय जो है इसमें यह है, रूहुल मानी जो बड़ी मशहूर तस्वीर है उसमें बयान होता है कि ये शिद्दत अमर कल की निशानी है। जैसे जब घमसान की जंग होती है तो उसे अरबी मुहावरे में कहा जाता है कि जंग ने अपनी पिंडली खोल ली, तो बड़ी शिद्दत जब बयान करनी होती है उसके लिए महावरतन पिंडली का खोलना भी इस्तेमाल किया जाता है। वल्लाहु आलम। फरमाया यौमा युक्शफु अनसा, और जिस दिन खोली जाएगी पिंडली, वयुदाउना इला सुजूद, और वो बुलाए जाएंगे सजदा करने के लिए, फला यस्ततियून, तो वो सजदा ना कर सकेंगे, खाशियतन अबसारहुम, झुकी हुई होंगी उनकी आंखें शर्मिंदगी और जिल्लत से, तरहकुहुम जिल्ला, अच्छा रही होगी उन पर जिल्लत, वक़द कानु युदाउना इला सुजूद, अब वो बुलाए जाते थे दुनिया में भी सजदे के लिए। मौज़न दिन में पांच वक्त पुकारता था हय्या अलस्सला, और वो नहीं आते थे, वहुम सालिमून, जबकि वो सही सलामत थे, अल्लाह के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो क़यामत के दिन जब चाहेंगे भी कि सजदा कर लें तो सजदा नहीं कर सकेंगे। फजरनी, बस छोड़ दीजिए मुझे, वमई युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, और उनको जो झुठलाते हैं इस कलाम को, वही अंदाज है कि मुनकिरीन कुरान को मेरे हवाले करो, छोड़ दो मुझे, मैं खुद ही काफ़ी हूँ उनसे बदला लेने के लिए। तो फरमाया नस्तदरिजुहुम, और हम आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे उनको, मिन हैसु ला यालमून, ऐसे तौर पर कि इन्हें इल्म भी ना होगा, व उमली लहुम, और हम उनको ढील देते हैं, इन न कई दिमतीन, बेशक हमारी तदबीर बहुत ज़बरदस्त है। वो समझ रहे हैं बड़े अच्छे जा रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह की ढील है जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अजाब के मुस्तहक बना रही है। अम तसअलुहुम अजरा, क्या आप उनसे कोई अजर मांगते हैं, उजरत मांगते हैं, फहुम मिन मगरमिम मुस्कलून, कि वो उसके बोझ तले दबे जा रहे हैं। तो फरमाया अम इंदहुमुल गैब, कि उनके पास गैब की खबर है, फहुम यक्तुबून, कि वो उसे लिख लेते हैं। तो ये सारी बातें हैं कि इनमें से कोई भी वजह नहीं है, असल में ये खुद ही गुनाहों की लज्जत को छोड़ना नहीं चाहते, और ये खुद ही ईमान वाली ज़िंदगी और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी नहीं चाहते, ये असल वजह है। आगे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई और तलकीन सबर जो है वो की जा रही है। फरमाया फ़ज़बिर लहुक्म रब्बिक, बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबर कीजिए अपने रब के हुक्म के लिए, वला तकुन का साहिबुल हूत, और ना हो जाइए मछली वाले की तरह, यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है, इस नादा व हुआ मखज़ूम, और उन्होंने पुकारा था जबकि वो गम से भरे हुए थे, और उनकी पुकार क्या थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह बेशक आप ही पाक है और मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। जामे तिर्मिज़ी में रिवायत है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन अल्फाज के साथ अल्लाह को पुकारेगा अल्लाह ज़रूर उसकी बात कबूल करेंगे। तो हमें ख़ुद ये तस्बीह करनी चाहिए, ये नहीं कि हमने मदरसे से बच्चों को बुला लिया, वो तो पढ़ते जा रहे हैं ये, और हम लगे हुए शरबत बनाने में, उसमें उसमें भाई जिसकी ज़रूरत है वो तो मांगे दुआ। इसके अल्फाज ही हैं कि इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जुल्म करने वाला हूँ। तो वो जो है बहरहाल अल्लाह हमें तौफीक दे। शौक तो है इस कलमे के पढ़ने का, लेकिन तरीका भी वैसे ही होना चाहिए जैसा मतलूब है। फरमाया इस नादा व हुआ मखज़ूम, जबकि यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा था, वो गम से भरे हुए थे। लौला अन तदारकहु निअमतुम मिन रब्बी, और अगर अल्लाह ताला अपना करम ना फरमाता जो है उन पर अपने फजल से, लनुबिज़ा बिल अराई व हुआ मज़मूम, तो वो फेंक ही जाते जो है चटियल मैदान में इस हालत में कि वो बड़े ही जो है वो कमज़ोर होते। तो फश तबाहू रब्बहू, बस नवाजा उनको उनके रब ने, फजअलहू मिनस सालिहीन, और कर दिया उन्हें कामिल नेक लोगों में से। वही यकादुल्लज़ीना कफरू, और बिल्कुल करीब था कि वो जो है काफिर लोग, ला युज़लिकूनका बिअबसारिहिम, कि वो फिसला दें आपको अपनी तेज़ निगाहों से, लम्मा समिऊ ज़िक्रा, जबकि वो सुनते थे कुरान, तो घूर घूर कर देखते थे और आँखों आँखों में जो है आप पर जो है वो रोक डालने की कोशिश करते थे। फरमाया वयकूलूना इन्नहु लमजनून, और वो कहते हैं कि वो तो एक मजनून है, वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, और नहीं है ये मगर नसीहत तमाम जहान वालों के लिए। तो ये आखिरी दो आयतें जो हैं ये नज़र के हवाले से भी बड़ी मशहूर हैं, और ये पढ़ी जाती हैं नज़र उतारने के हवाले से भी। तो किसी की आँखें जो हैं वो उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुँचा सकती जब तक कि अल्लाह का इज़्ज़त ना हो। सूरतुल हाक का मक्किया, और इसमें आप देखेंगे कि मज़मून आ रहा है तौहीद रिसालत आखरत का इनकार करने वालों के लिए दुनियावी सज़ाओं का जो है उससे डराया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तदाई तीन आयात में क़यामत का आना यकीनी है ये मज़मून आ रहा है। अल्हाक़तुमल हाक़ा, और यकीनी चीज़, और आपको क्या मालूम वो यकीनी चीज़ क्या है। वमा अदराका मल हाक़ा, और आपको क्या खबर वो यकीनी चीज़ क्या है। कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिया, कि झुटलाया था कौम समूद ने कौम आद ने भी खड़खड़ाने वाली को, और ये क्या मुराद है क़यामत। तो नाफरमान लोग अक्सर क़यामत का इनकार करते हैं, क्योंकि अगर क़यामत को मानेंगे तो फरमाबरदारी करनी पड़ेगी, मन चाही ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर गुनाहों को जारी रखना है तो फिर ये क़यामत के यकीन के साथ कैसे हो सकता है, तो उसका इनकार किया जाता है। आगे मुनकरीन आखरत का अंजाम बयान हो रहा है, तारीख से चंद मिसालें दी जा रही। फरमाया फअम्मा समूद, और वो जो समूद थे, फअहलिकू बित्तागिया, तो हलाक किए गए सख्त हैबतनाक आवाज़ से। वअम्मा आद, और वो जो आद थे, फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, तो वो हलाक किए गए एक सख्त तेज़ आंधी से। सख़रहा अलैहिम, के मुकर्रर कर दिया था उस अल्लाह ने उस हवा को उन पर, सब आले आलियों व समानियत अय्याम, यानी सात रातें और आठ दिन तक, हुसूमा यानी मुतवातिर, तो मुसलसल सात रातें और आठ दिन ये तेज़ सख्त हवाएँ चलती रहीं। और फरमाया फतरल कौम फीहा सरआ, और आप देखते हो उन लोगों को कि उनसे जो बिछड़े हुए हैं, कानम आजाज नखलन खाविया, गोया के वो तने हैं खजूर के खोखले पड़े हुए, तो इस तरह उनके लाशें पड़े हुए थे जैसे जो बिखरे हुए खोखले तने पड़े हों। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, बस क्या तुम देखते हो उनमें से कोई भी बाकी, तो अल्लाह ताला ने किसी नाफरमान को जो है बाकी नहीं छोड़ा। अहले मदीन का जिक्र आ रहा है, वजा फिरऔन, बल्कि आले फिरौन का पहले उसके बाद अहले मदीन, और इत्तकाब किया था जो है फिरौन ने, वमन कबलहू, और वो जो इनसे पहले नाफरमान लोग थे, वलमुतफिकातु बिलखातिया, और उल्टी हुई बस्तियों वालों ने भी, यानी इस सब जुर्म का, यानी वो गुनाह क्या था सबका वो शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी। फरमाया फ़ासऊ रसूल रब्बिहिम, बस उन्होंने नाफरमानी की अपने रब के रसूल की, फ़ाख़ज़हुम अख़ज़तर रुआबिया, तो पकड़ लिया उनको अल्लाह ने बड़ा सख्त पकड़ना। इन्ना लम्मा तगलमा, और यकीनन हमने ही जब हद से बढ़ गया था पानी, हमलनाकुम फिल जारिया, हमने सवार किया था तुम्हें एक जहाज़ में, ये कौम नूह की तरफ इशारा है, लिनजअलहा लकुम तज़किरा, ताकि हम कर दें उस तूफ़ान को तुम्हारे लिए एक यादगार, وَتَعِيَهَا اُذُنُوا وَعِيَمْ اور یاد رکھیں اس کو کان یاد رکھنے والے. فَإِذَا اُنفِخَ فِي الصُّورِ جب پوکا جائے گا سور میں, حوالے قیام قیامت بیان ہو رہے, نَفْقَةٌ وَاحِدَا یعنی پہلی بار کا پھوٹنا, تو اسے نفقت الفضاء بھی کہتے ہیں, ایک عجیب ہنگامہ اور تباہی جو اس کائنات میں ہوگی. تو فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضِ اور اٹھائی جائے گی زمین, والجبال اور پہاڑ بھی, فَدُقَّتَا دَقَّتَوْا وَاحِدَا پھر وہ سب کے سب ریزہ ریزہ کر کے ایک ہی بار ایک جیسے کر دیے جائیں گے. جو قرآن میں کئی جگہ مضمون آتا ہے کہ زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا, یہاں کے نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے, یہ پہاڑ اور یہ ان سب کو کوٹ کوٹ کر گویا برابر کر کے ایک بس بڑا سا میدان بنایا جائے گا, وہی میدان حشر ہوگا جہاں پہ تمام خلقت کو جمع کیا جائے گا, اول سے آخر تک تمام انسانوں کا ایک اجتماع ہوگا. تو فرمایا یوم یجمع وقعت الواقعہ پس اس دن واقع ہوگی وہ واقع ہونے والی یعنی قیامت, منشقت السماء اور پھٹ جائے گا آسمان, فہیا یوم یجمع واحیا اب وہ ہو جائے گا اس دن نہایت بودا کمزور. تو ابھی جس طرح مربوط لگ رہا ہے تو ایسا نہیں رہے گا, کہیں قرآن میں آتا ہے کہ اس کی کھال اتار دی جائے. تو بہرحال یہ متشابہات ہیں, کچھ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں, ایک جانور ہے اس کی کھال اتار دی جائے تو کیسا جو ہے بالکل مختلف اس کا روپ نظر آتا ہے. اسی طرح کہیں آتا ہے کہ آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا, تو ابھی تو کوئی شگاف نظر نہیں آتا لیکن قیامت کے دن بہت سے اس میں دروازے کھل جائیں گے. اسی طرح فرمایا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر, وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ اور اٹھائے ہوں گے اللہ کے عرش کو, آپ کے رب کے عرش کو, فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اپنے اوپر اس دن آٹھ فرشتے. مفسرین لکھتے ہیں کہ عموماً چار فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے, لیکن یہ قیامت کے دن آٹھ فرشتے ہوں گے جو اللہ کی جلال کی وجہ سے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے. یوم اذن تو عرضون اور اس دن تم پیش کیے جاؤ گے, لا تخفا منکم خافیہ اور نہیں مخفی رہے گا تمہارا کوئی راز. آگے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والوں کا انجام بیان ہو رہا ہے. فاما من اوتیا کتابہ بیمینی تو جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں, فیقولوا ہا اقرؤوا کتابیہ تو وہ کہتا پھرے گا کہ لو پڑھو میرا نامہ اعمال, دیکھو میں نے کیا کیا بڑی نیکیاں کی ہیں, پڑھو دیکھو کیا کچھ لکھا ہوا ہے, بہت خوش ہوگا وہ. تو انی ظننت انی ملاق حسابیہ اور وہ کہے گا بے شک میں تو سمجھتا تھا کہ میں دیکھ کر رہوں گا حساب. فہوا فی عیشت راضیہ اس کا انجام کیا ہوگا, بس وہ ہوگا نہایت پسندیدہ عیش میں, فی جنت عالیہ نہایت اعلیٰ جنت میں, قطوفہا دانیہ جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے, کلو واشربوا ہنیئا اس سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے, بما اسلفتم فی الایام خالیہ بسبب ان نیک اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے گزشتہ دنوں میں. اس کے مقابلے میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والوں کا انجام بیان ہو رہا ہے. واما من اوتیا کتابہ بشمالی اور لیکن جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں, اللہ ہم سب کا محفوظ فرمائے, فیقول یا لیتنی لم اوتا کتابیہ تو کہے گا اے کاش کہ نہ دی جاتی مجھے میرا یہ کتاب میرا نامہ اعمال, ولم ادری ما حسابیہ اب میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے, یا لیتہا کانت القاضیہ وہ کہے گا کاش کہ وہ ہوتی موت خاتمہ کرنے والی, پھر دوبارہ زندہ کیوں کر دیا گیا, بس وہ موت ہی خاتمہ کر دیتی. واغنا انی ما کہے گا ما اغنا انی مالیہ اور کچھ کام نہیں آیا میرے میرا مال, حلق انی سلطانیہ اور برباد ہو گئی میری ساری حکومت, خذوہ فغلوہ حکم ہوگا پکڑو اسے توپ پہنا دو اس کو, ثم الجحیم صلوہ پھر دوزخ میں اس کو جھونک دو, ثم فی سلسلہ اور پھر ایک زنجیر سے, ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوا یعنی جس کا طول 70 گز ہوگا اسے سے جکڑ دو, انہ کان لا یؤمن اور پھر اسباب بیان ہونے عذاب کے کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم بے شک وہ ایمان نہیں لاتا تھا عظمتوں والے اللہ پر. نمبر دو, ولا یحض علی طعام المسکین اور وہ ترغیب نہیں دلاتا تھا مسکین کو کھلانے کی, فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم سو آج نہیں ہے اس کا یہاں کوئی بھی دوست, ولا تعامن الا من غسلین और नहीं उसे कुछ खाने को मिलेगा सिवाय जख्मों के धोवन के। ला याकुलुहु इल्लल खातिउन, और नहीं खाएंगे इसको मगर गुनाहगार लोग। तो अल्लाह इस बुरे अंजाम से हम सबको महफूज फरमाए। अजमत कुरान का बयान आ रहा है, फला उक्सिमु बिमा तुबसिरून, फरमाया कि बस मैं कसम खाता हूँ उन चीज़ों की जो तुम देखते हो, या आसमान है, ज़मीन है, पहाड़ हैं, जानवर हैं, चरिंदे दरिंदे हैं। फरमाया वमा ला तुबसिरून, और इन चीज़ों की भी जो तुम नहीं देखते। इसमें ज़ात बारी ताला भी है, फरिश्ते भी हैं, अरवाह भी हैं, जिन्नात भी हैं, जो हम नहीं देख पाते। और ये कसमें किस पर हैं, इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम, बेशक ये कुरान तो रसूल करीम की ज़बान से निकला हुआ है। वमा हुआ बकौल शायर, और ये नहीं है किसी शायर का कलाम। कलील अम्मा तुमिनून, थोड़ा ही तुम यकीन करते हो। वला बकौल काहिन, और ना ही ये किसी जादूगर काहिन का कलाम। काहिन कहते हैं उन लोगों को जिनके कब्ज़े में मवक्किल जिन होते हैं, उनके ज़रिए वो फिर मुस्तकबिल की मालूमात करते हैं। तो फरमाया कलील अम्मा तज़क्करून, बहुत कम ही है जो तुम गौर व फिक्र करते हो। काहिनों शायरों को देखो और हमारे रसूल को देखो, फ़र्क नहीं नज़र आता तुम्हें। तंजील उम्मे रब्बिल आलमीन, फरमाया कि ये नाजिल किया हुआ है तमाम जहानों के रब की तरफ से। वलौ तकव्वला अलैना, और अगर वो जिम्मे लगाते हमारी कोई बात, बाज़ल अकाबील यानी कोई बनाई हुई बातों में से, यानी अगर रसूल अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत बात अल्लाह के जिम्मे लगा देते तो इसका अंजाम क्या होता। लाखजना मिनहुल बिल यमीन, तो हम पकड़ लेते हैं उनका दाना हाथ। सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन, फिर हम काट डालते हैं उनकी शहरक। फमा मिनकुम मिन अहद, बस ना होता तुम में से कोई भी अनहु हाजिज़ीन यानी उससे अल्लाह को रोकने वाला। व इन्नहु ला तज़किरतुल लिल मुत्तकीन, और बेशक ये कुरान तो एक नसीहत है लेकिन किन के लिए, मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए। व इन्ना ला नअलमु अन्ना मिनकुम मुकज़्ज़िबीन, और यकीनन हम जानते हैं कि बाज़ तुम में से झुठलाने वाले हैं। महरूमीन की हसरत बयान हो रही है। वह इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, और कुछ नहीं शक नहीं कि ये कुरान ये बाइस हसरत है कुफार पर। क़यामत के दिन उन्हें हसरत होगी कि काश हमने इसे माना होता, इस पर अमल किया होता। वह इन्नहु लहक़ुल यकीन, और बेशक ये कुरान ही बरहक है और यकीनी तौर पर गोया अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस तजवी कीजिए अपने रब के नाम की जो अजमतों वाला है। अगली सूरत है सूरह मारिज, बस यहीं ये सूरत करके फिर हम इंशाल्लाह बकिया 8 रकात अदा करेंगे। मौजू है इबादु शैतान के औसाफ बमुकाबला इबादु रहमान के औसाफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इब्तदाई हिस्से में क़यामत की हौलनाकी का बयान है और बिल्कुल शुरू में जो है एक साइल के सवाल का जवाब दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सआला साइलुम बिअज़ाब वाक़ि, सवाल किया एक सवाल करने वाले ने वाक़ होने वाले अज़ाब का। तो सुनन नसाई में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि यह नज़र बिन हारिस था और इसने दुआ की थी कि उसने यूँ कहा था कि अल्लाह अगर ये तेरी जानिब से हक़ है ये कुरान तो हमारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसा दे या अलमनाक अजाब दे दे। चुनांचे इसके जवाब में यहाँ ये बात कही जा रही है कि जब एक सवाल करने वाले ने सवाल किया वाक़े होने वाले अजाब का, लिल काफिरीन लैस लहू दाफ़े, और काफिरों के लिए नहीं उसका कोई टालने वाला। मिन अल्लाह ज़िल मआरिज, और अल्लाह की तरफ से जो मालिक है सीढ़ियों का। अभी सूरत का नाम भी मआरिज है और ये जो है मेराज की जमा है। मेराज का मतलब है सीढ़ी, और असल में 7 जो आसमान है ये असल में 7 सीढ़ियाँ हैं फरिश्तों की, और उनका आना जाना जो है इन पर लगा रहता है और आगे जिक्र आ रहा है, इसलिए यही सूरत का नाम है। फरमाया तअरुजुल मलाइकतु व रूहु इलैही, और चढ़ते हैं फरिश्ते और रूह यानी रूहुल अमीन जो है वो अल्लाह की तरफ इससे। फी यौमिन काना मिक़दारुहु, उस दिन जिसकी मिक़दार होगी 50,000 सना यानी 50,000 साल। तो क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर, और ये वो दिन होगा जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। ज़ाहिर है यहाँ तो 60-70 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है, और इसमें कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के साए, और जिस पर अल्लाह रहम फरमाएगा वही इसकी जो अमल ना किए उससे बचा रहेगा। फरमाया फसबिर सबरन जमीला, बस सबर कीजिए, बहुत ही अच्छा सबर करना। इन्नहुम यरौनहु बाईदा, यकीनन तुम तो उसे क़यामत को देखते हो दूर। वनराहु क़रीबा, और हम देखते हैं उसे क़रीब। यौम तकूनु समाउ कलमौल, अब अहवाले यौमुल क़यामा बयान हो रहे हैं। नंबर एक, जिस दिन होगा आसमान जैसे पिघला हुआ तांबा। और नंबर दो, वतकूनुल जिबालु कलहन, और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुनकी हुई रंगीन ऊन, जैसे ऊन उड़ती रहती जब धुनका जाता है, ऐसे पहाड़ उड़े होंगे। और नंबर तीन, वला यसअलु हमीमुन हमीमा, और नहीं पूछेगा कोई गर्म जोश दोस्त किसी दोस्त को। युबस्सरूनहुम, हालांकि वो दिखाए जाएंगे एक दूसरे को, फिर भी कोई पूछने नहीं आएगा। तो फरमाया यवद्दुल मुजरिमु, और चौथा आप कहें कि मंजर खींचा जा रहा है क़यामत का, कि उस दिन चाहेगा मुजरिम, लव यफ्तदी मिन अज़ाबी यौम इज़्ज़िन भी बनी, कि वो बदले में दे दे आज के दिन के अजाब से बचने के लिए अपने बेटों को। वसाहिबत ही वाखी, और अपनी बीवी को और अपने भाई को। व फसीलत हिल्लती तो भी, और अपने कुल कुंबे ख़ानदान को जो उसे दुनिया में पनाह दिया हुआ था। व मन फिल अर्दी जमिया, और जो कोई ज़मीन में बसता है उन सब के सब को। सुम्मा युंजी, फिर उसे बचा लिया जाए। तो क़यामत के दिन मुजरिम चाहेगा कि उसके सारे रिश्तेदार, बल्कि ज़मीन पर जितने इंसान हैं सबको जहन्नम में झोंक दिया जाए, बस उसे बचा लिया जाए। तो ये हकीकत है जिसकी तरफ यहाँ रोशनी दिलाई जा रही है। आज जिन दोस्तों की खातिर और जिन रिश्तेदारों की खातिर आखिरत को खोटा कर रहे हैं हम, तो क़यामत के दिन वो दोस्त और रिश्तेदार काम आने वाले हैं। बेहतर मौका है कि दोस्तों रिश्तेदारों अपने आप को तीनों, यानी ये सारी लोग जो है बच जाएँ जहन्नम से, और सब के सब जन्नत में जाने वाले बन जाएँ। ऐसे भी लोग हैं, हम भी ऐसी की दावत देते रहे। तो फरमाया कल्ला इन्नहा लज़ा, हरगिज़ नहीं, बेशक वो तो एक आग है। अब ये मुस्तहकीन नार के भी औसाफ आ रहे। नज़ातल शवा, जो ढेर देने वाली है खालों को। अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह अजरना मिनन नार, अल्लाह हम सब को इस आग से महफूज फरमाए। आगे ये इस नार के मुस्तहक कौन होंगे, छः किस्म की उनकी खराबियाँ आ रही हैं या अलामत आ रही हैं। फरमाया तदउमन अदबरा, यानी बुलाएगी उसको जिसने पीठ फेरी होगी हक से। और नंबर दो, व तवल्ला, और अल्लाह के हुक्म से सरताबी की होगी। नंबर तीन, व जमा फाउवा, फिर उसने जमा किया और महफूज रखा, अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया। और नंबर चार, इन्नल इंसान खुलका हदुआ, बेशक इंसान यानी काफिर वो कम हिम्मत पैदा किया गया, कम हिम्मत ही करता है, हिम्मत नहीं करता नेकियों की और अल्लाह की फरमा बरदारी की। और नंबर पाँच, इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब उसे पहुँचती है कोई तकलीफ तो बड़ी बेसब्री करता है, जजा फजा करता है। और नंबर छः, वइज़ा मस्सहु खैरु मनुआ, और जब उसे कोई खैर मिलता है तो उसमें बुखल करता है, कंजूसी करता है, लोगों को उसमें शामिल नहीं करता। तो ये जो है छः यहाँ पर सिफात आ रही हैं, आप कह सकते हैं इबादुश शैतान की या जहन्नम में जाने वालों की। आगे फिर अब बुनियादी सिफात आ रही हैं बंदा मोमिन, और ये तकरीबन जो है 10 सिफात यहाँ अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला ये सिफात हमारे अंदर भी पैदा फरमाए जो इबादुर्रहमान की सिफात है। फरमाए इल्लल मुसल्लीन, सिवाय नमाजियों के। अभी जितनी खराबियाँ बयान की गईं इनसे बचे हुए कौन होते हैं, नंबर एक नमाजी। और इस पर आप तफसील से देखना चाहें तो तामीर सीरत की असासात, इस नाम से मुंतखब निसाब के तीसरे हिस्से का ये पहला दर्स है, और तफसील से इस मौजू पर जो है वहाँ पढ़ सकते हैं। दूसरी सिफत आ रही है अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों में मुदावमत बरतते हैं। ये ऐसा नहीं करते कि सिर्फ जुमे जुमे पढ़ते हो, सिर्फ ईद ईद की नमाज़ पढ़ते हो, बल्कि ये पाँच वक्त की मुसलसल नमाज अदा करते हैं। और नंबर तीन वल्लज़ीना फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन मालूम, और ये वो लोग हैं जिनके मालों में एक मुकर्ररा हक़ होता है। किसके लिए, लिस्साइली वल महरूम, मांगने वालों के लिए, बदनसीबों के लिए। तो जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है वफिल माल हक़्क़ुन सिवा ज़कात, माल में ज़कात के अलावा भी अल्लाह ने हकूक रखे हैं। तो ये अहले ईमान, जिस तरह हम हर महीने लगाते हैं ये इलेक्ट्रिक का बिल का, ये टेलीफोन का, ये फलां का, ये बच्चों की फीस, ये घर के अजनास की, ये दूध वाले का, ये उसका, इसी तरह ये नेक लोगों के पास ये हिस्सा होता है हर दफ़ा, اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, سائلوں پر اور بدنصیبوں پر, محرومین پر. اور نمبر چار, چوتھی صفت آ رہی ہے, والذین یصدقون بیوم الدین, اور یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں بدلے کے دن پر. والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون, نمبر پانچ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ نچلت نہیں ہوتے, بے فکر نہیں ہوتے اللہ کے عذاب سے, اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے رہتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر معمول, بے شک ان کے رب کا عذاب ہی ایسی چیز ہے کہ اس سے جو ہے وہ امن میں نہیں ہوا جا سکتا. اور چھٹی صفت آ رہی ہے, والذین ہم لفروجہم حافظون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے, او ما ملکت ایمانہم, یا اپنی قمیضوں کے, فانہم غیر ملومین, یقیناً ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ قمیضوں کا سلسلہ بند ہے, اور کسی بھی عورت کو پکڑ کر بیچ دینے سے قمیض نہیں مل جاتی, یا نوکری کا لالچ دے کر یہاں سے لے جاتے ہیں پھر دوسرے ممالک میں بیچ دیتے ہیں تو اس سے بھی قمیض نہیں بنتی. قمیض پرزنرز آف وار کے لیے ایک طریقہ ہے جو جنگی قیدی بن کر آئے, اور آج کل یہ حصہ بالکل بند ہے. تو ایک ہی جائز ذریعہ ہے جنسی خواہش کو پورا کرنے کا, وہ ہے نکاح, تو اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ فی الحال نہیں ہے. تو فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, پس اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ, اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے جنسی جو ہے گویا تسکین کا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, بس وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. ہمیں بھی اپنی دیکھنا چاہیے, سیکچوئل ڈسپلن یہ مومن کی بنیادی صفات میں سے, تو اگر یہاں پر گڑبڑ ہے تو وہ مومن کی بنیادی صفات ہی نہیں ہے پھر آدمی. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اور یہ کامیاب ہونے والے اور رحمان کے جو بندے ہیں, تو فرمایا کہ وہ اپنی وہ باز کرتے ہیں اپنی امانتوں کا, نمبر سات, اور اسی طرح اپنے وعدوں کی نگہبانی کرتے ہیں. ہم نے سمجھا تھا امانت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کچھ پیسے رکھوا دی, بلکہ کسی کا راز بھی امانت ہے, کوئی مشورہ مانگ رہا ہے یہ بھی امانت ہے, کوئی عہدہ یا منصب ہے یہ بھی امانت ہے, اسی طرح یہ قرآن بھی امانت ہے, یہ دین بھی امانت ہے, یہ شریعت بھی امانت ہے جو ہمیں دوسروں تک پہنچانی, اور یہ ووٹ بھی ایک امانت ہوتا ہے, اور اسی طرح جو یہ جسم و جان اور بیوی بچے یہ سب جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. نبی صفت آ رہی ہے, والذین ہم بشہاداتہم قائمون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں. اور ایک تجربہ یہ بھی ہے کہ جو یعنی ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں, بخاری شریف کی روایت ہے, صحابہ نے کہا بتائیے, تو آپ نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, ناحق کسی کو قتل کرنا, اور والدین کی نافرمانی کرنا, اور جھوٹی گواہی دینا, اور جھوٹی گواہی دینا, اور جھوٹی گواہی دینا. ایک روایت میں کہ آپ نے تین دفعہ کہا, ایک روایت میں کہ آپ نے اتنی دفعہ کہا کہ صحابہ نے سوچا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں. تو اصل میں یہ جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑے بڑے جرائم میں سے ہیں, اور جھوٹی گواہی صرف عدالت میں کھڑے ہو کر ہی نہیں ہوتی, بلکہ یہ کسی کے غلط پیپرز کو اٹیسٹ کر دینا, اور غلط میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دینا, یا غلط اور کوئی سرٹیفکیٹ بنا دینا, یہ بھی جھوٹی گواہی ہونا. اسی طرح ان پڑھ ہے لیکن قلم ولم لگائے ہوئے ہیں, عینک رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگ پڑھا لکھا سمجھے, یہ بھی جھوٹی گواہی. یا اپنے نام کے ساتھ کوئی ایسا چیز لگا لینا جو وہ ہے نہیں, ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر لگایا ہوا, پروفیسر نہیں ہے پروفیسر لگایا ہوا, حاجی نہیں ہے حاجی لگایا ہوا, تو یہ بھی جو ہے جھوٹی گواہی میں آ جاتا. اسی طرح فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون, دسویں صفت, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ نمازوں کی حفاظت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ پورے اہتمام سے کرنا, رکوع اور سجدے کی چوری نہ کرنا. نماز کی بھی چوری کہلاتی ہے کہ جلدی سے رکوع اور جلدی سے جو ہے سجدہ کرنا, ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں انجام کیا ہے؟ اولئک فی جنات مکرمون, یہی لوگ جنتوں میں ہوں گے عزت دیے ہوئے. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں پیدا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے گورنروں کو خط لکھا تھا کہ تم میں سے جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ وہ باقی معاملات میں بھی جو ہے ان کی بھی نگہبانی کرے, اور جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے یعنی جو اللہ ہی کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو وہ بندوں کے کی کیا حقوق ادا کرے. आगे फिर कुफार के लिए तंबी आ रही है, फमा लिल्लज़ीना कफरू, बस क्या होगा काफरों को, क़िबलका मुहतईन, यानी वो जो है उस दिन जो है आपकी तरफ दौड़े आ रहे हैं, बल्कि अभी का जिक्र है यानी कुरैश मक्का का, कि क्या हो गया इन काफरों को कि काफरों को कि आपकी तरफ दौड़े आ रहे हैं, अनिल यमीनी वाले शिमाल अज़ीन, यानी दाएं और बाएं से टोलियां बनाकर, अयतमाउ कुल्लु मरियम मिनहु, क्या जो है वो चाहता है इनमें से हर आदमी, अयुदखला जन्नत नाइम, कि वो दाखिल किए जाए नेमतों भरी जन्नत में, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्ना खलकनाहु मिम्मा यालमून, और बेशक हमने पैदा किया उनको उस चीज़ से जिसको वो भी जानते हैं, कितने हफीर से पानी से पैदा किया गया है, फला उक्सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मगारिब, बस मैं कसम खाता हूँ पर उस रब की जो मशरिकों और मगरिबों का रब है, इन्ना लकादिरून, कि हम ज़रूर इस पर कादिर हैं, अला नुबद्दिल खैरम मिनहुम, कि हम बदल दें उन्हें ऐसी मखलूक से जो उनसे बेहतर हो, वमा नहनु बिमज़बूकीन, और हम इससे आजिज़ नहीं हैं। तो गोया एक तरह की धमकी है कि हमारे रसूल जब कुरान पढ़ते हैं और तुम उन पर इस तरह ठक के ठक बना लेते हो और इनकार करते हो और उन्हें डराते धमकाते हो, तो अल्लाह चाहे तो तुम सबको बदल दे और तुम्हारी जगह कोई और मखलूक ले आए, और अल्लाह को इससे रोकने वाला कोई नहीं, फजर हो बस छोड़ दीजिए उनको, यखज़ू व यलअबू, कि वो इन्हीं बातों में पड़े रहें और खेलते रहें, हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी युआदू, यहाँ तक कि देख लेंगे वो दिन जिसका उनसे वादा किया जाता है, अज़ाब का दिन या क़यामत का दिन, और उस दिन के अहवाल पर सूरत को ख़त्म किया जा रहा है, और अहवाल क़यामत में से चार का जिक्र किया जा रहा है, नंबर एक, यौम यखरुजूना मिनल अजदासी सिरा, और जिस दिन वो निकल पड़ेंगे अपनी कब्रों से दौड़ते हुए, और नंबर दो, कान्नहु इला नुसबी युफिजून, गोया कि वो एक निशान की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं मैदान हशर में, जिसका जहां मुकाम होगा वो अपने उस जगह की तरफ जो है तेज़ी से जा रहा होगा, और नंबर तीन, खाश आतन अबसार हो, झुकी हुई होंगी उनकी निगाहें, और नंबर चार, तरहकुहुम ज़िल्ला, और छा रही होगी उन पर ज़िल्लत, ज़ालिकल यौम, कहा जा रहा है यही होगा वो दिन यानी आखरत का दिन, अल्लज़ी कानू युआदून, वो जिसका उनसे वादा किया जाता है। तो अकूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वलमुस्लिमात, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़।